नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर पंच मक्कारों को बहुत तगड़ा झटका दिया है जी। इतना तगड़ा झटका कि वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं और बाहर जाकर अंट शंट बक रहे हैं, क्योंकि मुख्य इसमें थे कौन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाले कौन है, प्रशांत भूषण जी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की वैसे तो आजकल उसको चंदा कहाँ से मिलता है, उसको कौन से फॉरेन फंड मिल रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। लेकिन ये बताने के बाद मुझे लगता है कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट के रवैये में बदलाव आ गया। पिछली बार कहा गया था कि भाई साहब ये ADR वाले जो हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से इनकी प्राणवायु आती है, इनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, इसको भी चेक किया जाए। ये कहा था SG ने, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। तो आज इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स का मामला जब जाता है और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में जाता है और जस्टिस दीपांकर दत्ता दूसरे उसमें थे, तो भाई जो बातें कोर्ट पूछ रहा है उसका इनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। भाई कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो सारा का सारा जो मामला है ये कब से चल रहा है। SG कह रहे हैं भाई 74 साल से अपॉइंटमेंट हो रहे थे, 74 साल के अपॉइंटमेंट के बाद में एक दिन ना हमारे जस्टिस जोसेफ, जिनको मैं सेंट जोसेफ कहता हूँ, नॉट विदाउट रीजन है, सेंट जोसेफ जो है वो उनका कारण है कि उनको सेंट जोसेफ क्यों कहा जाता है। तो जो सेंट जोसेफ है उन्होंने अचानक ये कहा कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इलेक्शन कमीशन से डील करता है। आर्टिकल 324 का जो टू पार्ट है वो इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में लिखता है और वो ये कहता है कि भाई दे विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अंटिल सच टाइम एज पार्लियामेंट इनएक्ट्स अ लॉ। अब इन देयर विजडम सक्सेसिव गवर्नमेंट 74 साल में उन्होंने कोई लॉ बनाया ही नहीं, क्योंकि तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तक लॉ नहीं है तब तक तो है वो सरकारें जो है उसको अपॉइंट करती रहेंगी। तो जस्टिस यानी कि सेंट जोसेफ ने अचानक ये कहा कि नहीं, ये तो जो है ये अनऑक्यूपाइड फील्ड है। तो ये भी एक नया, देखिए क्या है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत एक्सपर्ट है सरकार की या जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको कैप्चर करने में, बहुत तगड़ा एक्सपर्ट है। तो इसने उसने कैसे कैप्चर कर ली पावर, उसने कैप्चर कर ली ये पावर क्योंकि उन्होंने विशाखा का एक केस हुआ था, आपको ध्यान है कि CBI के अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे, पहले CBI का अपॉइंटमेंट करता था, सरकार करती थी। तो वो एक विशाखा का एक जजमेंट आया, उसमें उन्होंने अनऑक्यूपाइड फील्ड वाली थ्योरी ले आई और उस अनऑक्यूपाइड फील्ड थ्योरी में कहा कि साहब कि जहां पर यह स्पष्ट नहीं है और जहां पर पावर तो है गवर्नमेंट को लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि भाई ये पावर एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई ऐसी फील्ड है, कोई ऐसी एंट्री है जो शेड्यूल्स बने हुए हैं, 3, 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्टें बनी हुई हैं उसमें से कोई ऐसा एरिया है जिस पर लॉ नहीं है, तो कोर्ट जो है वो अपनी तरफ से इंटरिम एज एन इंटरिम मेजर लॉ बना सकता है। तो ये एक इनडायरेक्ट कैप्चर ऑफ पावर था। अब वो अनऑक्यूपाइड फील्ड वाली थ्योरी इन्होंने सेंट जोसेफ ने यहाँ यूज कर ली। उनका चूंकि पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है, अरे भाई वहां तो साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट करेगी जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती, उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट इत्यादि जो है वो क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन में बहुत एक्सपर्ट है, तो उन्होंने क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करके ये कहा कि भाई ये अनऑक्यूपाइड फील्ड है और ये चूंकि अनऑक्यूपाइड फील्ड है इसलिए हम इसमें निर्देश देते हैं कि जब तक स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाए या जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाए तब तक जो है वो ऐसी कमेटी इस पर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट डिसाइड करेगी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, CJI और लोकसभा में जो लार्जेस्ट पार्टी उसके नेता वो होंगे। पहले ये LOP हुआ करता था लेकिन अब पिछले दो चुनावों से यानी 2014 2019 से LOP कोई बन ही नहीं रहा है। तो जब कोई LOP बन ही नहीं रहा है तो फिर ये रास्ता निकाला गया कि भाई इस तरह से किया जाए। तो ये सेंट जोसेफ ने ये ऑर्डर कर दिया। अब सेंट जोसेफ के ऑर्डर के बाद में जब अगला सेशन आया तो सरकार ने लॉ बना दिया। तो सरकार ने लॉ बना दिया और लॉ बना के उसमें ये कहा कि भाई ये एलओपी प्राइम मिनिस्टर और एक सरकार द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, ये जो है ये तीन मिलके इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव करेंगे और उसके लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी इत्यादि इत्यादि जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उस प्रकार से वो बना। तो अब उसको चैलेंज करके श्री प्रशांत भूषण पहुंच गए। देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का पूरा इंटेंशन क्या था। मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, नहीं तो पहले जो इन्होंने प्लान किया था वो ये था। और आप बताऊं आपको, कल या परसों डेरिक ओब्रायन का एक स्टेटमेंट आया। जानते हैं क्या स्टेटमेंट आया? वो स्टेटमेंट आपको बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे आपको पता चले कि ये जो पंचमकार तत्व है ये वो लोग जो अनइलेक्टेबल हैं, जो चुने नहीं जा सकते, जिनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, जिनको जनता ने अपना ऐसा एक रास्ता दिखा दिया है जिससे उनको अपना आईना आईने में अपना चेहरा दिख गया है, उन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था क्योंकि वो भारत को पाकिस्तान की तरह ले जाना चाहते हैं। क्या कहा डेरिक ओब्रायन ने, जानना इसलिए आवश्यक है, वो आज की जो हियरिंग हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में। डेरिक ओब्रायन ने कहा कि चुनाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में कराने चाहिए। बहुत खूब, 2014 का चुनाव क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में कराया था? 2014 के चुनाव में ऐसा कैसे हुआ कि कांग्रेस सरकार के तत्वावधान में उस समय, अगर इलेक्शन कमीशन को आप इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं तो सरकार तो कांग्रेस की थी ना, तो कांग्रेस की सरकार ने क्या सुसाइड किया था, क्या किया था? जब उस समय इंडिपेंडेंटली सरकार बदल गई, 2004 में इंडिपेंडेंटली सरकार बदल गई, उसके पहले लगातार सरकारें बदलती गई इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आज कौन सा नया खेल आ गया भाई? केवल ये कि एक मिथ्या प्रचार है कि भाई अरे सारी इंस्टीट्यूशंस जो है वो मोदी ने सबवर्ट कर दिए हैं, सारी एसोसिएशंस जो हैं वो ध्वस्त हो गई हैं, जैसे कि पहले सारी एसोसिएशंस सारी इंस्टीट्यूशंस जो थी वो पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ करती थी। तो ये किस्सा चला के आज एडीआर में रिलेट कर लीजिएगा क्या कहा वहां पर और वो क्यों कहा। वो पाकिस्तान से प्रेरणा ले रहे हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि सरकार जो है वो इंटरिम सरकार बनाई जाती है इलेक्शन के समय और जुडिशरी के लोग वहाँ चुनाव कराते हैं, उसके बाद भी वहाँ पे कैसी सरकारें होती हैं और कैसे चुनाव होते हैं आप सबको ध्यान है अच्छी तरह से पाकिस्तान का। अब ये पाकिस्तान वाला पैटर्न यहाँ लाना चाहते थे, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र इस लिहाज से है क्योंकि पाकिस्तान की जो न्यायपालिका है वो तो आर्मी के इशारे पर चलती है। अगर आर्मी के इशारे पर ना चले तो एक दिन में जो है उनके सारे जो कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे पब्लिक में और उनका कोई वहाँ पे हिसाब किताब नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से कठपुतली हैं आर्मी की। लेकिन यहाँ पे कम से कम आर्मी की कठपुतली नहीं है, सरकार की कठपुतली नहीं है और ये लोग जो पंचमक्कार टाइप के लोग हैं उनको अपने कठपुतली बनाने का प्रयास करते हैं, उसको भी समय समय पर पुशबैक मिल जाता है जुडिशरी से, उसका उदाहरण आज की हियरिंग है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात आई तो भाई पुशबैक किया बेंच ने और कहा भाई इसमें क्या ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या उसमें जो लिखा है जिसकी पालना नहीं हुई। उन्होंने तो यही लिखा है ना कि लॉ बनाइए, तो लॉ उन्होंने बना दिया। ये कहाँ लिखा है उसमें कि कोई भी जो लॉ बनाए है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना आवश्यक है, ऐसा तो है नहीं। तो जब ये मामला पिटता देखा भाई लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे दे आर नॉट एबल टू मेक मच ऑफ अ हेडवे, तो भाई लोगों ने तुरंत रास्ता बदला और तुरंत रास्ता बदल के बोलना शुरू किया लेकिन साहब प्रोसीजर गलत है, साहब प्रोसीजर गलत है। देखिए इन्होंने जो है वो अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हुए थे और अनूप चंद्र पांडे का इन्होंने सर्च कमेटी अपॉइंट की और सर्च कमेटी अपॉइंट करने के बाद में इन्होंने उसका 15 मार्च को उन्होंने उसके सिलेक्शन की डेट रखी और उसके बाद सब ये दूसरे वाले जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और जब दो वैकेंसीज हो गई तो दो वैकेंसीज को नोटिफाई करके सर्च कमेटी का टाइम इतना कम कर दिया और 200 लोगों की उन्होंने लिस्ट दी। और एलओपी जो है वो ये कह रहे हैं, एलओपी नहीं मतलब जो पार्टी लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी यानी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, ये साहब 200 लोगों की लिस्ट हमको एक दिन पहले दी गई। यार 200 लोगों की लिस्ट एक दिन पहले दी जाती है ना, हमने पता नहीं कितनी डीपीसीज कराई होंगी और किसी भी डीपीसी में एक दिन पहले भी लिस्ट नहीं दी जाती सीक्रेसी के हिसाब से। जब मीटिंग आरंभ होती है उस समय लिस्ट दी जाती है, आपको सारे फैसले उसी मीटिंग में ही करने होते हैं और जो बाकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मीटिंग आप 3 घंटे चलाइए, 4 घंटे चलाइए, 5 घंटे चलाइए, लेकिन जो कुछ करना है जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है उसी मीटिंग में मिलती है। ये तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जैसी जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को पहले से पता होती है उसमें इतनी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, यहाँ तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के सिलेक्शन की बात हो रही है और आप चाहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जैसे जो है पार्टी के वो मेंबर नहीं है क्या, उनको आप अगर 200 की लिस्ट दे दीजिए 10 दिन पहले तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ लीक होगी। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कहता है कि हम कॉलेजियम की जो मीटिंग होती है अपॉइंटमेंट के लिए हम उसके मिनट्स जारी नहीं करेंगे, एडवांस में कोई सर्कुलेशन नहीं करते, लेकिन उनके सामने तर्क रखा जा रहा है कि साहब इनको, और वो उसका कॉग्निजेंस तो उन्होंने लिया, हाँ भाई ये देखिए ये प्रोसीजर जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें थोड़ा और टाइम दिया जा सकता था, थोड़ा कुछ किया जा सकता था, ये सब बातें जो है वो डिस्कशन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोग आजकल पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप लोगों की भी संपत्तियां इत्यादि होती है ना, उनको संपत्तियों को डिक्लेयर करने के बारे में आपका क्या विचार है, संपत्ति डिक्लेयर कर दो, लोगों का जो कोई आपके बारे में कोई संदेह वंदेह है वो सब दूर हो जाए, कोई डिक्लेयर ही नहीं करता, दूसरों को भाषण देते रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता, पर उपदेश कुशल बहुत तीरे जे आचरहिं ते नर न घनेरे, घनेरे मतलब बहुत अधिक नहीं है, जो इसके आचरण करें ऐसे लोग बहुत अधिक नहीं है, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत सारे हैं। अब यहां पर छोटी मोटी बात हो गई लेकिन अल्टीमेटली हुआ भाई, उन्होंने कहा ना वी आर डिसमिसिंग दी इंटरिम एप्लीकेशन, और डिसमिस कर दी उन्होंने सारी इंटरिम एप्लीकेशन जो ये मांग रही थी, कह रही थी कि भाई यानी चुनाव आरंभ हो चुके हैं और क्या है एप्लीकेशन कि साहब इनके जो है अपॉइंटमेंट को स्टे किया जाए। यार अपॉइंटमेंट ऑलरेडी इफेक्ट में आ गया, चुनाव चालू हो गए, आप क्या चाहते हो कि पूरी भारत में केवास हो जाए? चाहते स्पष्टतः वो यही है, वो चाहते हैं कि चुनाव के कंडक्ट में इस तरह का केवास हो जाए तो फिर वो पूरे चुनाव को डीलेजिटिमाइज करके और फिर जो है एक प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय बखेड़ा आरंभ कर सके, ये कह के कि भारत के जो चुनाव हैं वो गलत हुए हैं या भारत के चुनावों में धांधली हुई है। उद्देश्य यही है, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ उद्देश्य यही है, उद्देश्य ये है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को डीलिजिटिमाइज करो, उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, प्रश्न चिन्ह लगाओ, उसके बाबत आप संदेह पैदा करो और उसको करके फिर आपके जो सोरोस टाइप के यूएस टाइप के, आपको पता ही है ना यूएस कुछ ना कुछ बोलता रहता है, सीए के बारे में ही कुछ बोल दिया, और के बारे में बोल दिया, कल भी आपको पता है कि सीए पे भी स्टे नहीं मिला, समस्या हो गई सीए पे भी कल स्टे नहीं मिला, इस पर भी स्टे नहीं मिला, केजरीवाल और फंसता चला जा रहा है। तो इन लोगों के जो अकाउंट्स है ना उनको आप देख लें, ये राणा सवा आरफा राजदीप खाजदीप रवीश सुप्रीम कोर्ट के वकील टाइप के हैं, ये जो इस्लामी वकील हैं, निजाम पाशा को देख लीजिए, अनस तनवीर को देख लीजिए, ये सारे लोग जो हैं इनके अकाउंट्स पे ट्विटर पे ये लोग क्या क्या लिखते हैं, इनको अब भारतीय जुडिशरी में भरोसा नहीं रहा है। प्रशांत भूषण भी यही इसी तरह की बातें करते हैं कि प्रशांत भूषण के कहने पर यदि जुडिशरी चले इंदिरा जयसिंह के कहने पर यदि जुडिशरी चले तब तो जुडिशरी जो है वो सच सच्ची है, तब तो जुडिशरी जो है वो कमिटेड है, तब तो जुडिशरी जो है वो अपना संवैधानिक पात्र निभा रही है, वरना सारे के सारे जो है वो गोदी मीडिया हो गए हैं, सारे के सारे फिर गोदी न्यायपालिका हो गए हैं, सब जगह यही चल रहा है। कोई भी व्यक्ति ये जो सारा का सारा जो ये पूरा तंत्र है, इस तंत्र को मैं चाहूंगा कि मोदी 3.0 में इस तंत्र के विरुद्ध सीधी कार्रवाई की जाए। हो गया बहुत, इन लोगों ने 10 साल नंगा नाच करते हुए खुद तो नंगा नाच किया इन्होंने और फैसिस्ट बताया मोदी को। ऐसा फैसिस्ट है बंदा कि वो सत्यपाल मलिक गवर्नर रहते हुए आलोचना करता रहा मोदी सरकार की और मोदी जी की स्वयं की, और उसको हटाया नहीं उन्होंने। और जो मोदी के तथाकथित जो गोदी मीडिया वाले थे वो ये कहते रहे कि आप कर क्या रहे हो यार, डोंट बी अ कॉवर्ड मिस्टर मोदी, रिमूव हिम। ये गोदी मीडिया वाले जो उनके समर्थक थे वो कह रहे थे, लेकिन उनकी नहीं मानी। तो भाई समस्याएं गंभीर हैं, लोगों की जो तकलीफें हैं वो अत्यंत गंभीर हैं, और इसलिए जो भाई लोगों की स्थिति है वो भी अत्यंत गंभीर है। और आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, और यही कह के कि भाई पंचमक्कारों को ये जो झटका लगा है, ये टूल किट वालों को ये जो झटका लगा है, सोरोस वालों को ये जो झटका लगा है, और फॉरेन मीडिया को ये जो झटका लगा है, ये बड़ा गंभीर झटका लगा। कोई बात नहीं, रोइए, अब तो इलेक्शन जो है वो होंगे और जो पद्धति है उसी से होंगे, और उस पद्धति से जो निर्णय आना है सबको पता है। और यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।